स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 17 नवंबर और दिन गुरुवार। सीरिया के एलेप्पो में बच्चों के अस्पताल पर हवाई हमला, 21 लोगों की मौत।
It is shocking that healthcare facilities continue to be attacked in Syria.
क्या नोटबंदी के फैसले से आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, करेंगे एक विश्लेषण। ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों पर क्या हो रहा है इसका असर?
ट्रांसपोर्ट में ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है पार्टी लोग का। पार्टी लोग का ट्रांजेक्शन के वजह से हम लोगों को गाड़ी स्टॉप पड़ा हुआ है, खड़ा है, अपना आपस में एक दूसरे के खरीद बिक्री पे रोक लगा हुआ है अभी।
और भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। सीरिया विद्रोहियों के नियंत्रण वाले पूर्वी एलेप्पो में दूसरे दिन भी हवाई हमले जारी रहे हैं। निगरानी समूह सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इन हमलों में 21 लोगों की मौत हो गई। दो दिन के दौरान हमले में मरने वालों की कुल संख्या 32 तक पहुंच गई है, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। हवाई हमलों में बच्चों के एक अस्पताल को भी भारी नुकसान हुआ है। रूस ने कहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC में शामिल होने की प्रक्रिया से अलग हो रहा है। रूस का कहना है कि ICC उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है और ये संस्था कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकी है। इस हफ्ते ICC ने क्राइमिया में साल 2014 में हुई घटनाओं को रूस और यूक्रेन के बीच सशस्त्र संघर्ष बताया था। इसका मतलब यह है कि ये क्षेत्र ICC के ज्यूरिसडिक्शन के तहत आएगा। हेग स्थित BBC संवाददाता का कहना है कि ये कदम कोर्ट की वैधता को कम करने का प्रयास है। अफ्रीका के 3 देशों ने भी ICC से अलग होने का ऐलान किया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल डे ब्लाजियो ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। ब्लाजियो के मुताबिक उन्होंने ट्रंप को बताया कि अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की उनकी योजना को लेकर लोगों में डर है। ब्लाजियो डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो बिना दस्तावेज के रहने वाले प्रवासियों की हिफाजत के लिए जो कुछ भी संभव होगा वो करेंगे। उन्होंने कहा, मैं दूसरे उम्मीदवार का समर्थन कर रहा था और हम सब जानते हैं कि उन्हें ज्यादा पॉपुलर वोट हासिल हुए, लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर मुझे नव निर्वाचित राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम करना है, लेकिन साथ ही अपनी मान्यताओं को भी बरकरार रखना है जो इस शहर के लोगों के हितों का ख्याल रखने में है। ये थे न्यूयॉर्क के मेयर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। म्यांमार में जारी हिंसा से बचने के लिए सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमान सीमा पार कर बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। म्यांमार के रकायन राज्य में जारी सैन्य अभियान में करीब 1 महीने के दौरान कम से कम 130 लोगों की मौत हो चुकी है। चश्मदीदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि सैकड़ों घरों में आग लगा दी गई है। सरकार इन दावों को गलत बता रही है, लेकिन वो विदेशी रिपोर्टरों को इस क्षेत्र के दौरे की इजाज़त नहीं दे रही है। बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि सीमा पार करने की कोशिश कर रहे लोगों में से कुछ की गोली मारकर जान ले ली गई, जबकि बाकी को जबरन वापस कर दिया गया। कोलंबिया की सेना का कहना है कि उसने फार्क के 2 विद्रोहियों को मार दिया है। सेना के मुताबिक फार्क विद्रोहियों के साथ संघर्ष उस वक्त हुआ जबकि सुरक्षा कर्मी एक अन्य विद्रोही समूह के सदस्यों की तलाश कर रहे थे। BBC समाचार।
स्वागत है आपका BBC हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है नवंबर की 17 तारीख और दिन है गुरुवार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सीरिया से। सीरियाई शहर एलेप्पो में सरकारी सेना के हवाई हमलों में पिछले 2 दिनों के दौरान 30 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पूर्वी एलेप्पो में हमलों के दौरान कल बच्चों के एक अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। हमले के दौरान अस्पताल कर्मियों ने तहखाने में छुपकर अपनी जान बचाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सभी पक्षों से अपील की है कि वो अस्पतालों को निशाना न बनाए। BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए वात्सल राय से।
सीरिया के एलेप्पो में आसमान से लड़ाकू विमान लगातार बम बरसा रहे हैं। करीब 4 साल पहले तक सीरिया के वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र रहे शहर के पूर्व हिस्से की अब तक सुरक्षित रही इमारतें भी खंडर में तब्दील होती जा रही हैं। सीरिया में कई संस्थानों की मदद करने वाली द इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक सीरिया सरकार और सहयोगी देशों के हमले में बायान चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को काफी नुकसान हुआ है। अस्पताल के निदेशक का कहना है कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और बचने के लिए तहखाने में छुपे हैं। उनके साथ मरीज और अस्पताल के बाकी कर्मचारी भी हैं। ये पूर्वी अलेप्पो के ऐसे आखिरी अस्पतालों में था जो संघर्ष शुरू होने के बाद से सुरक्षित बचे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता तारिक याशारविच ने अस्पताल पर हुए हमले को लेकर कहा,
इट इज शॉकिंग दैट हेल्थ केयर फैसिलिटीज कंटिन्यू टू बी अटैक्ड इन सीरिया।
ये भयावह स्थिति है। सीरिया में स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और इसके सहयोगियों ने सिर्फ इस साल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के 126 मामले दर्ज किए हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वो स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पतालों को निशाना बनाना बंद कर दें, क्योंकि इसकी वजह से आम लोग मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो रहे हैं। ये थे विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता के शब्द। खबर है कि हवाई हमलों के दौरान एक ब्लड बैंक और एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया है। बीबीसी के एक विश्लेषक के मुताबिक सरकार और सहयोगी देशों के हमलों में अब तक सैकड़ों अस्पतालों को निशाना बनाया गया है। ये सरकार की सोची समझी रणनीति भी हो सकती है, जिससे विद्रोही सरेंडर को मजबूर हो जाएं। अलेप्पो में खाने के सामान की भी भारी कमी है और इस वजह से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक गैर सरकारी संगठनों के पास जो खाने का सामान था वो लूट लिया गया है। अलेप्पो के एक शिक्षक जुहैर ने बीबीसी को बताया, ये लोग हर सुबह हमला करने और परेशान करने के लिए उठते हैं। जिन जगहों पर खाने का सामान है वो उसे निशाना बनाते हैं। ये एक तरह की लूट है। ये सामान उन गैर सरकारी संगठनों का है जो यहाँ काम कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ बहुत बुरी स्थिति है, लोग परेशान हैं। उनमें से कुछ उन दुकानों पर हमले कर रहे हैं जहाँ चीनी और चावल है। ये सामान बहुत महंगा है और वो उसकी कीमत नहीं चुका सकते हैं, इसलिए लूट रहे हैं और सेना कुछ नहीं कर रही है। ये थे अलेप्पो के एक शिक्षक के शब्द। रूस के ऐलान के बाद 3 हफ्ते तक चले संघर्ष विराम के बाद मंगलवार से अलेप्पो में हवाई हमले दोबारा शुरू हुए हैं। निगरानी समूह सीरियन ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि बुधवार को विद्रोहियों के अधिकार वाले कई इलाकों में विमानों से मिसाइलें दागी गईं और हेलीकॉप्टर से बैरल बम गिराए गए। लगातार जारी हमलों की वजह से अलेप्पो की स्थिति और खराब हो रही है।
तो अलेप्पो में बच्चों के एक हॉस्पिटल पर हुई बमबारी, कई बच्चों के मारे जाने की खबर बता रहे थे वात्सल राय।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब खबरें भारत से। सबसे पहले बात मोदी सरकार के उस फैसले की, जब उन्होंने 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने का फैसला किया। इस फैसले को सही ठहराते हुए मोदी सरकार तो कई दावे कर रही है, लेकिन क्या कहते हैं जानकार? कुछ का कहना है कि इससे अगले कुछ महीनों में महंगाई गिरेगी, ब्याज दरों में गिरावट आएगी और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। बचत खातों में पैसे जमा होने से बैंकों को और सरकार की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की बात भी कही जा रही है। बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने IDBI बैंक के पूर्व उप प्रबंध निदेशक BK बत्रा से इस मुद्दे पर और बातचीत की।
इमीडिएटली तो उन्हें थोड़ी सी असुविधा झेलनी पड़ेगी, जैसा सब लोग कर भी रहे हैं, कतारों में खड़े होके और अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको पूरा करने में भी उनको थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, क्योंकि कतारों में खड़ा होके करेंसी एक्सचेंज करके लेना पड़ रहा है और उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन अगर हम इसको दूरंदेशी के हिसाब से देखें तो ये ऐसा कदम है जिससे कि, जैसे सरकार ने शुरू में कहा है कि वो काउंटरफीटिंग जो जाली नोट हैं उन पर नियंत्रण लगाने में सुविधा होगी, जो टेरर फिनेंसिंग है उनको चेक में लाने में सुविधा होगी, लेकिन जो अनअकाउंटेड मनी या काला धन है उसको रोकने में कितनी सफलता मिलेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आगे जाकर फॉलो ऑन मेजर्स क्या लिए जाते हैं और जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए कुछ सुविधा दी जाती है कि नहीं, क्योंकि उनके जो बिजनेसेस हैं, जो छोटे छोटे व्यापार हैं, वो कैश के दम पर ज्यादा चलते हैं और फॉर्मल फाइनेंसिंग के दम पर कम चलते हैं, तो उनको ज्यादा तकलीफ ना हो ये देखने के लिए शायद सरकार को कुछ सुविधा देनी पड़े और उनको फिर बैंकिंग सिस्टम में लाने के लिए अगर कुछ अतिरिक्त किया जाता है सरकार के द्वारा तो ये बहुत ही अच्छा कदम साबित होगा।
और अर्थव्यवस्था पर किस तरह से असर पड़ेगा लॉन्ग टर्म में अगर बत्र साहब देखें तो?
अर्थव्यवस्था पर शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा सा ये असर पड़ेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी कम होगी क्योंकि कैश के सर्कुलेशन पर काफी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड करती है और वो अगर सर्कुलेशन से बाहर कुछ टाइम तक रहेगा तो लाजमी है कि अर्थव्यवस्था पर कुछ फर्क पड़े। लेकिन आगे चलकर ब्याज थोड़ा सॉफ्ट होंगे, ब्याज दरें थोड़ी सॉफ्ट होंगी, उसके कारण जो लेंडिंग है उसमें आसानी होगी, बैंकों को कासा जो है काफी मिल रहा है अब डेली बेसिस पे तो उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स कम आएगी, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो बैंकों को सपोर्ट कर पाएगी और बाकी कल्याण के कार्य कर पाएगी। तो कुल मिला के इसका लॉन्ग टर्म तो पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा। सिर्फ यही है कि ये जो यात्रा शुरू की है उसको सरकार कैसे मोड़ पर सही दिशा में ले जाती है और इसके जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट अपेरेंट जो भी इसका असर जनरल जनता पर दिख रहा है उसको कैसे मैनेज करती है इस बात पर काफी डिपेंड करता है।
ये थे IDBI बैंक के पूर्व उप प्रबंध निदेशक BK बत्रा और जैसा कि बता रहे थे कि आम जनता पर इसका असर जो है वो जाहिर है, सरकार को देखना होगा कि उसको कैसे असर को कम किया जाए क्योंकि हालात तो एक हफ्ते के बाद भी सामान्य शायद नहीं हो पाए हैं। घरों के अंदर गृहणियां परेशान हैं तो घर से दूर सड़क पर ज़िंदगी गुजारने वाले ट्रक ड्राइवर और उनके हेल्पर की ज़िंदगी शायद और भी दूभर हो गई है। ट्रक चलाने वालों और ट्रांसपोर्ट एजेंसियों पर नोटबंदी के असर के बारे में सुनिए पटना से मनीष शांडिल की ये रिपोर्ट।
पांच सौ और 1000 के नोट बंद किए जाने का खासा असर ट्रक ड्राइवर्स पर भी देखा जा रहा है। इनमें से हजारों की तादाद तो ऐसे ड्राइवर्स और उनके सहायकों की है जिन्हें अपने सफर के दौरान इस घोषणा के बारे में पता चला। नोटबंदी का कमाई से लेकर इनके भोजन तक पर असर पड़ा है। हरियाणा के पलवल के मोहम्मद अलीम फिलहाल अपने खाली ट्रक की बुकिंग के इंतजार में पटना में पड़े हुए हैं। ट्रक में हेल्पर का काम करने वाले अलीम ने बताया,
दिक्कत हुई जो 1500 को बंद करवाए इनमें दिक्कत ही आ रही है, जो 500 का नोट है उसे तो 400 चल रहा है, 100 रुपया घाटे से दे रहे, जो 1000 का नोट है उसमें 200 रुपया घाटे से दिया जा रहा है। अब गरीब आदमी को तो बहुत हो गया, 100 रुपया बहुत है, हम तो 10-10 रुपया नो देखते है, हमारे को तो इतना देखना पड़ता है, अब घर छोड़ कर 20-25 दिनों के बाद जाएंगे, हमारे पास किराने लिए पैसा नहीं है बचते, फिर क्या फायदा।
वहीं पटना के ट्रक ड्राइवर दिनेश कुमार के मुताबिक बीते एक हफ्ते के दौरान उनकी कमाई पर भी बुरा असर पड़ा है।
असर इसी है कि मेरी गाड़ी चल नहीं रही है, गाड़ी की वजह से हम लोग बैठे हुए हैं 8 दिन से और गाड़ी जब तक निकलेगी ना जब तक हम लोग के पैसा मिलेगा नहीं, तनख्वाह उनका तो मिल जाती है, ये है कि कमीशन पर हम लोग रहते हैं और गाड़ी एक हफ्ते से चल नहीं रही है इसीलिए मेरा कमीशन रुकी हुई है।
पप्पू कुमार की पटना बाईपास पर यादव ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। पप्पू के मुताबिक नोटबंदी के कारण बीते एक हफ्ते के दौरान उनकी गाड़ियों की बुकिंग करीब 80% घट गई है और उनके जैसा ही हाल बाकी एजेंसियों का भी है।
असर है, अभी ट्रांसपोर्ट में ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, पार्टी लोग का ट्रांजेक्शन के वजह से हम लोग को गाड़ी स्टॉप पड़ा हुआ है, खड़ा है। पार्टी जो ब्लैक मनी वाइट मनी का जो प्रॉब्लम है जिसके वजह से लोग अपना आपस में एक दूसरे के खरीद बिक्री पे रोक लगा हुआ है, अभी खरीद बिक्री होगा तब यहाँ सामान किधर इधर से उधर जाएगा, खरीद बिक्री नहीं हो रहा है, नहीं जा पा रहा है।
जबकि उत्तर प्रदेश के अमित कुमार के मुताबिक नोटबंदी के फैसले के कारण वे सफर के दौरान भी खुद से खाना बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं।
वैसा था जब वहाँ से होटल वाले के पास बैठ जाते तो वो पहले 100 रुपये काटने के लिए बोलता है, जब खाना खाने के लिए बोलता है, तो ये जब तक तो हमने परेशानी झेली। अब हम इधर पटना में आ गए, पटना में बैंक में खड़े हुए थे, बैंक वालों ने कह दिया बोले बाहर के बंदों के लिए नोट नहीं है, पैसे खुले नहीं है, फिर हार के हम लोगों को बर्तन लेना पड़ा, 1000 का दे रहे 100 रुपये वहाँ यहाँ भी काट के दे रहे हैं। हमने गैस चूल्हा खरीदा है, छोटे मोटे बर्तन खरीदे, पतीले, फिर उसी से अपना गुजारा कर रहे हैं। अब ये है कि जो भी है दाल रोटी हमने चटनी जैसे बना रहे खा रहे हैं, कभी आलू बना लेते कभी चावल बना लेते, हम लोगों से खाना कभी बनाया नहीं हम लोगों ने इतने साल के रिकॉर्ड में जब से मैं हेल्पर ही कर रहा हूँ।
लेकिन इस नोटबंदी का एक फायदा भी हुआ है, सरकार ने फिलहाल टोल टैक्स की वसूली रोक रखी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के राजीव कुमार भारत रोड लाइन्स की ट्रक चलाते हैं। राजीव के मुताबिक बीते एक हफ्ते में उन्हें फायदा भी हुआ है।
टोल पर बहुत फायदा हुआ है, टोल पर हर आदमी हर गाड़ी वाला यही कहता है, हर समय ऐसे ही होना चाहिए, कोई जाम नहीं मिलता है टोल पर ना, तो उस समय कई कई किलोमीटर का जाम रहता था, अब टोल पर जो 2 घंटे ख़राब होते हैं 10 मिनट में निकल जाते हैं, और करीब 5-6 हज़ार का टोल का फ़ायदा हुआ है, नहीं एक हफ्ते के अंदर जब से ये पैसे बंद हुए हैं और टोल फ्री हुआ है, जब से 6-7 हज़ार रुपया गुजरात से यहाँ तक बच गया बगैर टोल का।
ट्रक पर ज़िंदगी गुजारने वाले कुछ ऐसे ही मुश्किल हालात में घर लौटने और नोटबंदी के कारण सामने आई परेशानी के खत्म होने का इंतजार करते हुए सफर कर रहे हैं। मनीष चांडिली, BBC, पटना।
तो जैसा कि आपने अभी मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट में सुना कि ट्रक ड्राइवर और उनके हेल्पर किस तरह से परेशान थे, दूसरी तरफ लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर 8 दिन बाद भी बैंक से पैसे निकालने की जद्दोजहद में जुटे हैं। वहीं बेंगलुरु हाल के वर्षों में सबसे महंगी कही जाने वाली एक शादी में मेहमानों की मेज़बानी में जुटा रहा। खदान मालिक और BJP के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी की बेटी ब्रह्मणी की शादी हुई। ये वही जनार्दन रेड्डी हैं जिन्हें अवैध खनन और अयस्कों के निर्यात के आरोप में 2 साल जेल में रहना पड़ा था। शादी का वक्त ऐसा है जब पैसा होने के बाद भी नोटबंदी के कारण आम लोग छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुनिए इमरान कुरैशी की ये खास रिपोर्ट।
बेंगलुरु के लोगों ने बहुत सारी बड़ी शादियां देखी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो उन्हें नजर आया है उससे उनकी आंखें भी हैरान हैं। हैरानी की पहली वजह यह है कि जब सारा देश रुपये के लिए मोहताज होकर ATM की लाइन में लगा है, तब सिर्फ एक शादी में इतना खर्च हुआ है कि शहर के हजारों लोगों की शादी हो जाए। शादी के लिए शहर के बेंगलुरु पैलेस के मैदान में 36 एकड़ जमीन पर विशाल शामियाना लगा था। शामियाना विजयनगर साम्राज्य के जैसा बना था। उसके साथ ही शादी का मंडप था जो विजयनगर की राजधानी हम्पी जैसा बना था। 5 दिन तक चले जलसे में 50,000 मेहमान शामिल हुए थे। BJP के पूर्व मंत्री और खनन मालिक जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए उनके शहर बेल्लारी से बसों में भरकर लोग आए थे। हालांकि इतनी बड़ी शादी में बहुत सारे राजनेता नहीं आए। BJP के अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री रहे BS येडियुरप्पा इस बात से इनकार करते हैं कि इस शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा,
दिस इज नॉट करेक्ट मैडम, नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंटर एंड दे डोंट इंटरफेयर सच मैटर एट ऑल। यू सी आई वांट टू नो प्लीज गो थ्रू इन द मैरिज आईडिया, दे आर नॉट स्पेंड इवन 40-50 करोड़ अकॉर्डिंग टू मी।
ये सच नहीं है कि केंद्र नेतृत्व निर्देश दी है कि हमें इस शादी में भाग नहीं लेना चाहिए, और यह इस बात में भी कोई सच नहीं है कि वे 500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। अगर आप अंदर जाकर देखें तो पता चलेगा कि 40 या 50 करोड़ से ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है। ये थे BS येडियुरप्पा। जनार्दन रेड्डी ने राजनीति में हर किसी को शादी का आमंत्रण भेजा था, एक छोटे नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक। बहुत सारे नेता शादी में इसलिए नहीं आए क्योंकि यह रेड्डी खानदान की शादी थी और सबको खबर थी कि इसमें धन का खूब प्रदर्शन होगा। BJP के और नेता और पूर्व मंत्री बसवराज बोम्मई ने मीडिया से कहा,
देखो भाई, जनार्दन रेड्डी साहब हमारे मित्र है और उनका बेटी का शादी चल रहा है, सो ये तो एक सोशल फंक्शन है। जब मित्र ने आमंत्रण दिया तो उसको हम कबूल करने का हमारा,
आप इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहते?
बिल्कुल राजनीति से नहीं जोड़ना, बाकी देयर इज अ सिस्टम फॉर इट।
जनार्दन रेड्डी वही शख्स हैं जिन पर अवैध खनन और अयस्कों के निर्यात का आरोप लगा था। 2 साल जेल में रहने के बाद उन्हें बेल मिली है। कई लोग मान रहे हैं कि इस शादी के जरिए उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो दोबारा राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। कर्नाटका में विधानसभा के चुनाव मई 2018 में होंगे। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
खबर सच है अगर BBC पर है।
और अब अखबारों की समीक्षा कर लेते हैं और इसके लिए मौजूद हैं वात्सल राय। वात्सल बताइए।
जी इकबाल साहब, बात वहीं से शुरू करना चाहता हूँ जहाँ से इमरान कुरैशी साहब ने छोड़ा है। रेड्डी की बेटी की शादी की वो बात कर रहे थे और नई दुनिया अखबार ने खबर दी है कि शादी पर आयकर विभाग की भी नज़र थी, हालांकि उनके तमाम पार्टियों के दोस्त वहाँ पहुँचे हुए थे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल से जो नोट बंदी के बाद नोट बदले जा रहे हैं और उंगलियों में स्याही लगाने का
स्याही, क्रम
जी शुरू हो गया है और तस्वीरें कई अखबारों ने छापी है जिसमें लोग एक हाथ में नोट दिखा रहे हैं, दूसरी हाथ में जिस तरह से वोटिंग करने के बाद स्याही दिखाई जाती है वो दिखा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो थोड़ा सुकून देने वाली साबित हो सकती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों के लिहाज से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज अमृतसर में 3 और 4 दिसंबर को होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे।
चलिए, तो अच्छी खबर है। हाँ।
जी, जनवरी में पठानकोट पर जो हमला हुआ था उसके बाद से ये पाकिस्तान की ओर से पहला एक मंत्री स्तर का दौरा होगा। हालांकि इसके साथ ही एक खबर और अखबार ने बॉक्स में दिया है जिसे दूसरी अखबारों ने भी जगह दी है हिंदी और अंग्रेजी के, कि भारतीय सीमा के पास पाकिस्तान की सेना अभ्यास कर रही है। इस अभ्यास में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ दोनों मौजूद थे और नवाज शरीफ का कहना था कि अगर दुश्मन की ओर से कोई दुस्साहसी कदम उठाया जाता है तो हम माकूल जवाब देंगे। तो ये दो तरह की खबरें हैं। इसके साथ खबरें जुड़ी हुई हैं, कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और जिसमें बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई नोटबंदी को लेकर। खासतौर पर अमर उजाला अखबार ने कुछ विपक्षी नेताओं के बयानों को लेकर हेडलाइन लगाई है और बड़ी दिलचस्प हेडलाइन है। रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में सांसद थे, कल उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद के तौर पर ही बयान दिया, हालांकि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। उनके बयान की हेडलाइन बनाई है, बेलन मानेंगी ग्रामीण महिलाएं, यानी नोटबंदी के बाद स्थिति यह है। शरद यादव के बयान की हेडलाइन लगाई गई है, किसान की धोती में क्रेडिट कार्ड नहीं होता। शरद यादव ने जो बातें की कल वहाँ पर। और इसी तरीके से मायावती जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता हैं, उनका बयान है कि वित्त मंत्री के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मायावती ने बार बार मांग की कि प्रधानमंत्री आएं और बयान दें। कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा ने मोर्चा संभाला।
बहुत शुक्रिया वात्सल आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब चलते हैं छत्तीसगढ़। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन पिछले सप्ताह भर से राज्य के 1600 राइस मिल्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरकारी नीति और महंगाई का हवाला देकर बंद की गई इन राइस मिलों के कारण 5 लाख मजदूर सप्ताह भर से बेरोजगारी झेल रहे हैं। सुनिए आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
पिछले गुरुवार से छत्तीसगढ़ की राइस मिलों के दरवाजे बंद हैं और इनमें काम करने वाले मजदूर बेरोजगार। इन राइस मिलों को सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान देती है, जहां से मिलिंग के बाद चावल सरकार को दिया जाता है, जिसका उपयोग राज्य और केंद्र सरकार जनवितरण प्रणाली के लिए करती हैं। राइस मिल के मालिकों का कहना है कि सरकार ने धान से चावल बनाने की प्रक्रिया के लिए दी जाने वाली कीमत 45 रुपये से कम करके 25 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। इसके अलावा धान के लिए दिए जाने वाला 16 लाख करोड़ बोरा, जिसे बारदाना भी कहा जाता है, उसको लेकर भी विवाद है। छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल का कहना है कि सरकार उनकी समस्या को समझना नहीं चाहती।
जो 40 रुपए हमको मिलता था उसको 25 रुपया कर दिया गया, तो सीधा से सीधा 15 रुपए का नुकसान हमको वहां हो गया। जो पिछले वर्ष 23 रुपया बारदाने के काटते थे उसे 32.5 रुपया कर दिया, तो 10-10.5 के आसपास वो टैक्स मिला के 10-10.5 का नुकसान हमको वहां हो गया। बिजली के रेट बढ़ गए, उसके बाद जो ट्रांसपोर्टिंग है उसमें कोई नुकसान होता है, तो ये हमको 25-30 रुपया का नुकसान तो शुद्ध आज दिख रहा है। तो इतने नुकसान में राइस मिल कहां करेंगे।
इन राइस मिलों और धान के भूसे पर निर्भर उद्योगों का आकलन करें तो राज्य में लगभग 5 लाख लोगों की रोजी रोटी इनसे चलती है। अब जबकि सरकार ने 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की है तो राइस मिलर्स मंडी से धान ही नहीं उठा रहे हैं। जाहिर है इसका असर समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 10 लाख किसानों पर भी पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल कहते हैं,
सरकार को कोई मतलब नहीं, 15 दिन पहले से राइस मिलर नोटिस दिए हैं। सरकार राइस मिलर के हड़ताल को केवल राइस मिलर का हड़ताल न समझे, बल्कि उसकी कृषि से जोड़ के भी देखना चाहिए। सरकार खुद 15 तारीख खरीदेगी तो धान आएगा, उसे तो राइस मिलर के पास ही बेचेगा।
लेकिन राज्य के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सरकार राइस मिलों की समस्याओं को सुलझाना चाहती है और इस दिशा में प्रयास भी कर रही है।
कस्टम मिलिंग को लेकर जो राइस मिलर्स की कुछ समस्याएं थी उनके ऊपर में चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद फिर से उसको सब कमेटी को रिफर किया गया है कि सब कमेटी फिर से एक बार बैठकर उन समस्याओं को समाधान कैसे कर सकती है उस पर निर्णय करे।
फिलहाल अलग अलग जिलों में राइस मिल चलाने वालों को नोटिस जारी किया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि 2 दिनों के भीतर राइस मिलों में कामकाज शुरू नहीं किया गया तो सरकार इन राइस मिलों को सील बंद करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। लेकिन राइस मिल मालिकों का दावा है कि उनकी हड़ताल कम से कम इस तरीके से तो खत्म नहीं ही कराई जा सकती है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और अब खेल समाचार। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से विशाखापट्टनम में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। पहला मैच ड्रॉ हो गया था। इस टेस्ट मैच पर रिपोर्ट सुनिए राखी शर्मा से।
भारत और इंग्लैंड के बीच आज से विशाखापट्टनम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। राजकोट में खेले गए 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले को भारत बमुश्किल बचा पाया था जिसकी वजह से ये सीरीज और ज्यादा रोमांचक हो गई है। राजकोट के विपरीत इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पिच पर ज्यादा घास नहीं छोड़ी गई है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि दूसरे दिन से इसे टर्न मिलेगा। पहले मैच में भारत को टॉस हारने का खमियाजा भुगतना पड़ा था। दूसरे मैच में टॉस के नतीजे से असर ना पड़े इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इस पर भारतीय कप्तान विराट कोहली कहते हैं,
देखिए हमने इसीलिए लास्ट मैच में भी कोशिश करी थी कि सब बेसिस कवर्ड हो क्योंकि टॉस अपने कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप टॉस जीतते हैं तो थोड़ा एडवांटेज मिलता है इनिशियली, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप यू नो बैकफुट पे हो जाएंगे और गेम में आपको डिसएडवांटेज होगा। तो आई थिंक टॉस की इंपॉर्टेंस रहती है लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आई डोंट थिंक इतनी रेलेवेंस होती है क्योंकि जो टीम अच्छा खेलती है प्रेशर बना सकती है वो कभी भी कमबैक कर सकती है, कभी भी डोमिनेट कर सकती है मैच को, अनलाइक ODI मैच जहाँ पे ड्यू फैक्टर और ये सब चीज़ें आती हैं। तो टॉस में थोड़ा इंपॉर्टेंस है लेकिन आई डोंट थिंक कि उसकी वजह से गेम का रिजल्ट डिफाइन किया जा सकता है।
टॉस पर किसी भी टीम का नियंत्रण नहीं है लेकिन किसी एक चीज पर नियंत्रण कर भारत विशाखापट्टनम में राजकोट से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, इस पर कप्तान कोहली कहते हैं,
कैच द बॉल, दैट्स ऑल आई कैन से टू सम इट अप। We've got really well in the last 12 to 14 months, as I said after the game as well.
विशाखापट्टनम में अगर हमें जीत हासिल करनी है तो हमें गेंद लपकनी होगी। पिछले 12-14 महीने में हमने अच्छी फील्डिंग की है। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप चांस नहीं लेते हैं तो जीतना बेहद मुश्किल हो जाता है। स्किल, टॉस या पिच के मुकाबले ये पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चांस लेते हैं तो 3 विकेट पर 250 रन होने के मुकाबले 5 विकेट पर 100 रन पर भी आप कमाल कर सकते हैं, इसलिए हमें कैच लपकने होंगे। मैदान पर ज्यादा फोकस रहने से काफी असर पड़ता है।
विशाखापट्टनम टेस्ट से सलामी बल्लेबाज KL राहुल की वापसी हो रही है। उनके प्लेइंग 11 में शामिल होने का मतलब है कि गौतम गंभीर को बाहर बैठना पड़ सकता है। इसके अलावा भारत गेंदबाजी में भी बदलाव कर सकता है। इंग्लैंड ने भारत को पिछली 2 टेस्ट सीरीज में हराया है। भारत के लिए खराब बात ये रही है कि उसने 2012 में घरेलू मैदान पर ही सीरीज गंवाई थी। उस दौरे में भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन विकेट की खास रणनीति बनाई थी, लेकिन उनका दाव उल्टा पड़ गया था। इस बार ऐसा ना हो इसके लिए अपना 50वां टेस्ट खेलने जा रहे भारतीय कप्तान विराट कोहली पूरी तरह से सतर्क हैं।
तो खेल समाचार के बाद अब जाते जाते सुन लेते हैं कि क्या कुछ है प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। सीरिया में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले पूर्वी अलेप्पो में दूसरे दिन भी हवाई हमले जारी रहे। निगरानी समूह सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इन हमलों में 21 लोगों की मौत हो गई। रूस ने कहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC में शामिल होने की प्रक्रिया से अलग हो रहा है। रूस का कहना है कि ICC उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल डे ब्लाजियो ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। ब्लाजियो के मुताबिक उन्होंने ट्रंप को बताया कि अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की उनकी योजना को लेकर लोगों में डर है। म्यांमार में हिंसा से बचने के लिए सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमान सीमा पार कर बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। कोलंबिया की सेना का कहना है कि उसने फार्क के 2 विद्रोहियों को मार दिया है। सेना के मुताबिक फार्क विद्रोहियों के साथ संघर्ष उस वक्त हुआ जबकि सुरक्षाकर्मी एक अन्य विद्रोही समूह ELN के सदस्यों की तलाश कर रहे थे। BBC समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक 1 घंटे बाद कार्यक्रम विश्व भारती में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं ہماری ویب سائٹ bbchindi.com پر. اور اب اقبال احمد کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ دیجیے اجازت. نمسکار.